एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पहला मेजबान
और मैं हूं आपकी दूसरी साथी मेजबान। आज हम गोता लगा रहे हैं एक ऐसी दुनिया में जो हमारी स्क्रीन के पीछे छिपी है, लेकिन हमारे हर क्लिक, हर पसंद और शायद हमारी सोच को भी बदल रही है।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं माइकल श्रीज की किताब रेकमेंडेशन इंजिन्स के बारे में। ये वो तकनीक है जो हमें बताती है कि अगला गाना कौन सा सुने,
हाँ,
कौन सी फिल्म देखें या ऑनलाइन क्या खरीदें। लेकिन क्या ये सिर्फ सुझाव हैं या मतलब कुछ और गहरा चल रहा है?
यही आज का बड़ा सवाल है। ये सिर्फ सुविधा की बात नहीं है, ये हमारे डिजिटल जीवन का कह सकते हैं ताना बाना बुन रहे हैं। अमेज़न, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, यूट्यूब सब इसी पर चलते हैं। लेकिन श्रेयस हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, क्या ये इंजन सिर्फ हमारी पसंद को भांप रहे हैं या असल में हमारी पहचान गढ़ने में मदद कर रहे हैं? ये आज बेहद जरूरी विषय है, क्योंकि जैसा आपने कहा, ये तकनीक लगभग अदृश्य होकर भी बहुत शक्तिशाली हो चुकी है।
तो इससे पहले कि हम इंजन के अंदर झांकें, चलिए इसके मैकेनिक यानी लेखक से मिलते हैं, माइकल श्रेयस। ये कोई आम टेक गुरु नहीं है,
हाँ,
वो MIT स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में रिसर्च फेलो हैं और इनोवेशन, टेक्नोलॉजी के असर और खास तौर पर इंसान और कंप्यूटर के बीच के रिश्ते पर काम करते हैं। उनकी पिछली किताबें जैसे सीरियस प्ले, वो भी इसी बात पर रोशनी डालती हैं कि हम तकनीक का इस्तेमाल सोचने और नया करने के लिए कैसे करते हैं।
हाँ, और पता है, यही बात उन्हें खास बनाती है। वो सिर्फ कोड या बिजनेस मॉडल नहीं देखते, उनका नजरिया बिल्कुल संगम जैसा है। तकनीक, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, सब एक साथ।
अच्छा,
वो इस सवाल में दिलचस्पी रखते हैं कि तकनीक हमारे सोचने के तरीके को कैसे बदलती है। इसीलिए वो ये समझाने के लिए एकदम सही व्यक्ति हैं कि ये सिफारिश इंजन कैसे चुनने में नहीं बल्कि बनने में हमारी मदद या शायद बाधा डाल रहे हैं। वो तकनीक के मानवीय पहलू को पकड़ते हैं।
बिल्कुल सही,
और यही इस किताब का दिल है। रेकमेंडेशन इंजन सिर्फ एल्गोरिदम का कोई मैनुअल नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
श्रेयस का सबसे बड़ा और कहूं तो चौंकाने वाला तर्क ये है कि इन इंजनों का असली मकसद शायद वो नहीं जो हम सोचते हैं। ये सिर्फ हमारी अगली खरीद का अनुमान लगाने के लिए नहीं बने हैं। इनका गहरा, ज्यादा दिलचस्प काम है आत्मखोज, मतलब सेल्फ डिस्कवरी,
और व्यक्तिगत विकास, पर्सनल ग्रोथ में हमारी मदद करना
है। ना कमाल की बात, किताब का जो बुनियादी सवाल है वो ही बदल जाता है।
बिल्कुल,
अब सवाल ये नहीं है कि मुझे आगे क्या चुनना चाहिए, बल्कि ये है कि मैं कौन बनना चाहती हूँ। हाँ, श्रेयस कहते हैं कि जब हम इन सुझावों से इंटरैक्ट करते हैं, किसी गाने को लाइक करते हैं, किसी फिल्म को स्किप करते हैं, किसी किताब पर क्लिक करते हैं, तो हम अनजाने में अपने भविष्य के स्व, फ्यूचर सेल्फ के साथ संवाद कर रहे होते हैं।
मतलब हर क्लिक एक संकेत है, एक इशारा कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। ये तो बहुत गहरा विचार है।
हाँ, और ये एक दो तरफा रास्ता है। हम अपने डेटा से सिस्टम को सिखाते हैं और सिस्टम के सुझाव हमें नई संभावनाएं दिखाकर हमें आकार देते हैं। इसे श्रेयस सहविकास या को एवोल्यूशन कहते हैं।
सहविकास
जी। ये किताब हमें इन इंजनों को महज शॉपिंग असिस्टेंट की बजाय व्यक्तिगत विकास के शक्तिशाली, हालांकि कभी कभी पेचीदा औजारों के रूप में देखने की चुनौती देती है। ये प्रिडिक्शन से पॉसिबिलिटी की तरफ।
चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं। किताब हमें बताती है कि देखिए, सुझाव देना कोई नई बात तो है नहीं।
हाँ, सदियों से है।
सदियों से हम भरोसेमंद लोगों, दोस्तों, परिवार, आलोचकों से सलाह लेते आए हैं। असली चुनौती हमेशा से रही है जानकारी का अंबार और ध्यान की कमी। तकनीक ने बस इसी पुरानी इंसानी जरूरत को ऑटोमेट कर दिया है और उसे एक विशाल पैमाने पर फैला दिया है।
हाँ, और इसी पैमाने पर एल्गोरिदम तस्वीर में आते हैं। श्रेयस हमें इसके ब्लैक बॉक्स से डराते नहीं बल्कि आसान भाषा में समझाते हैं। मोटे तौर पे दो मुख्य तरीके हैं। एक है कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग। ये समझ लीजिए ऐसा है जैसे कोई लाइब्रेरियन आपकी पसंद की किताब देखकर वैसी ही और किताबें सुझाए।
अच्छा,
अगर आपको रहस्य उपन्यास पसंद है तो ये और रहस्य उपन्यास दिखाएगा। ये खास रुचियों, मतलब नीच टेस्ट के लिए बढ़िया है, पर ज्यादातर आपको आपकी जानी पहचानी दुनिया में ही रखता है, थोड़ा सीमित।
और दूसरा जो शायद ज्यादा जाना माना है वो है सहयोगी फिल्टरिंग, कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग। ये अमेज़न के लोग जिन्होंने ये खरीदा, उन्होंने वो भी खरीदा जैसा है।
हाँ हाँ, बिल्कुल।
इसका लॉजिक है, आप जैसे हजारों और लोगों को ये गाना पसंद आया तो शायद आपको भी आएगा। इसकी खूबी है कि ये आपको चौंका सकता है, किसी ऐसे नए कलाकार या जॉनर से मिलवा सकता है जिसके बारे में आपने सोचा भी ना हो। इसे कहते हैं सेरेंडिपिटी या अप्रत्याशित खोज।
सही कहा, सेरेंडिपिटी। लेकिन इसकी एक सीमा है। इसे काम करने के लिए बहुत सारे लोगों के डेटा की जरूरत होती है, और आजकल ज्यादातर सिस्टम इन दोनों का मिश्रण यानी हाइब्रिड मॉडल इस्तेमाल करते हैं ताकि दोनों की ताकत मिले। स्पॉटिफाई का म्यूजिक डिस्कवरी इसी का उदाहरण है, पर यहाँ असली मजा तकनीक में नहीं बल्कि इसके असर में है।
और यही किताब का सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है, मनोविज्ञान। श्रेज इसे व्यवहारिक मनोविज्ञान से जोड़ते हैं। याद है वो पसंद का विरोधाभास, पैराडॉक्स ऑफ चॉइस?
हाँ, इतने सारे विकल्प।
हाँ, जब इतने सारे विकल्प हों कि हम चुनी ना पाएं, या फिर चॉइस आर्किटेक्चर, जिस तरह से विकल्प हमारे सामने रखे जाते हैं वो हमारे फैसले को कैसे प्रभावित करता है। शेज कहते हैं कि सिफाइश अंजन आज के सबसे शक्तिशाली चॉइस आर्किटेक्ट हैं।
ये तो सोचने वाली बात है। मतलब वो हमें बता नहीं रहे कि क्या चुने, लेकिन वो चुनाव को इस तरह पेश कर रहे हैं कि हम किसी एक दिशा में हल्के से नज, मतलब नज हो जाएं।
बिल्कुल। और इससे भी ज्यादा गहरा ये है कि हर सिफारिश हमारे बारे में एक परिकल्पना, एक हाइपोथेसिस है। एल्गोरिथम अंदाजा लगा रहा है कि हमें क्या पसंद आ सकता है।
अच्छा।
और हमारा हर क्लिक, हर लाइक, हर स्किप उस परिकल्पना को सही या गलत साबित करने वाला डेटा है। ये एक लगातार चलने वाला फीडबैक लूप है।
तो अनजाने में हम इन सिस्टम्स को बता रहे हैं कि हम कौन हैं, और वो हमें और ज्यादा हम जैसा बनने में मदद कर रहे हैं, या ये शायद वो हमें उस दिशा में ले जा रहे हैं जो वो सोचते हैं कि हमें होना चाहिए। ये तो कमाल का भी है और थोड़ा थोड़ा डरावना भी।
हाँ,
ये आत्म अन्वेषण का एक नया तरीका है, पर क्या इस पर हमारा नियंत्रण है, ये सवाल उठता है।
और ये असर सिर्फ हम तक सीमित नहीं रहता, शेज में समाजशास्त्रियों ले जाते हैं। ये इंजन अनजाने में टेस्ट कम्युनिटीज बना रहे हैं, ऐसे लोगों के समूह जो शायद कभी मिले नहीं पर जिनकी पसंद मिलती जुलती है।
अरे हाँ, सोचिए किसी खास तरह के संगीत या फिल्मों के फैंस का ग्लोबल नेटवर्क।
बिल्कुल।
और यही लॉन्ग टेल का सिद्धांत भी काम आता है। ये इंजन उन अनूठी कम लोकप्रिय चीजों, नीच प्रोडक्ट्स के लिए भी दर्शक या ग्राहक ढूंढ सकते हैं जो पहले शायद गुमनामी में खो जाती।
हाँ, किसी छोटे इंडी कलाकार का गाना भी दुनिया भर में सुना जा सकता है। ये तो अच्छी बात है।
ये अच्छी बात है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। क्या ये हमें एक जैसे स्वाद वाले समूहों में बांट रहे हैं? क्या ये हर्ट बिहेवियर को बढ़ावा दे रहे हैं, जहां जो लोकप्रिय है वो और लोकप्रिय होता जाता है?
इको चैम्बर वाला खतरा। हाँ, ये विविधता बढ़ा सकते हैं पर एक रूपता लाने का खतरा भी है, और अमेजॉन, नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियों के लिए, भाई उनके लिए तो ये इंजन सिर्फ एक फीचर नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उनका खजाना है, उनकी मुख्य रणनीतिक संपत्ति, कोर स्ट्रेटेजिक एसेट। ये हमें जोड़े रखते हैं, हमारी वफादारी बढ़ाते हैं और उनकी कमाई का बड़ा जरिया है।
तो ये तो हुआ वर्तमान, भविष्य क्या है?
और भविष्य, हाँ, श्रेज का अनुमान है कि हम सिर्फ सिफारिश करने वालों, रेकमेंडर्स से आगे बढ़कर डिजिटल सलाहकारों, एडवाइजर्स के युग में जा रहे हैं।
सलाहकारों मतलब?
सोचिए जरा, अगर आपका फोन आपको सेहत की सलाह वैसे ही देने लगे जैसे वो गाने सुझाता है, या करियर चुनने में मदद करे, या निवेश की रणनीति बताए।
अरे वाह, ये तो बहुत शक्तिशाली संभावनाएं हैं। शिक्षा में, व्यक्तिगत सीखने के रास्ते, स्वास्थ्य में, बीमारियों से बचाव के उपाय, संभावनाएं अपार हैं।
हाँ, संभावनाएं अपार हैं, लेकिन यहीं पर वो नैतिक सवाल खड़े होते हैं। डेटा गोपनीयता का क्या होगा? क्या एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह, मतलब बायस हो सकता है? जैसे क्या वो किसी खास समूह के लोगों को अलग तरह के सुझाव देगा?
हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है।
पारदर्शिता कितनी होगी? क्या इन सिस्टम्स का इस्तेमाल हमें मैनिपुलेट करने के लिए किया जा सकता है? श्रेष्ठ आशावादी हैं, लेकिन वो हमें जिम्मेदारी की याद दिलाते हैं। इन ताकतवर औजारों का इस्तेमाल समझदारी से करना होगा।
तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो कुछ मुख्य बातें उभरती हैं। पहली और शायद सबसे अहम, ये इंजन सिर्फ भविष्यवाणी नहीं, संभावना पैदा करने वाले हैं। प्रिडिक्शन नहीं, पॉसिबिलिटी।
बिल्कुल।
इनका असली मकसद हमें सिर्फ वही दिखाना नहीं जो हमें पसंद है, बल्कि हमें नई चीजों से मिलाना है, खोज करवाना है।
दूसरी बात, स्वयं और सिस्टम का सह विकास, को एवोल्यूशन। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये एक तरफा नहीं है। हमारे चुनाव सिस्टम को सिखाते हैं, और सिस्टम के सुझाव हमारे भविष्य के चुनाव और हाँ, हमारी पहचान को गढ़ते हैं। हम इन एल्गोरिदम के साथ मिलकर लगातार बदल रहे हैं। भारत में ही देखें, जैसे जैसे लोग ऑनलाइन कंटेंट ज्यादा देख रहे हैं, उनकी पसंद कैसे विकसित हो रही है और कैसे प्लेटफॉर्म उसी हिसाब से कंटेंट बना रहे हैं या सुझा रहे हैं।
तीसरा है सिफारिश बतौर चॉइस आर्किटेक्चर। ये हमें मजबूर नहीं करते, पर ये विकल्पों को ऐसे सजाते हैं कि हमारा झुकाव किसी एक तरफ हो जाता है। ये जानना हमें ज्यादा जागरूक उपभोक्ता या यूजर बनाता है।
और चौथा, निजीकरण का दोहरा पहलू, पर्सनलाइजेशन का। एक तरफ ये सुविधाजनक है, हमें अपनी पसंद की चीजें बिना ढूंढे मिल जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ फिल्टर बबल या इको चेम्बर का खतरा है।
हाँ, वो तो है।
यहाँ हम सिर्फ वही देखते सुनते हैं जो हमारे विचारों से मेल खाता है और दुनिया के दूसरे नजरियों से कट जाते हैं। सोशल मीडिया पर ये बहुत साफ दिखता है ना, जहाँ एक ही तरह की खबरें या विचार बार बार घूमते रहते हैं।
हाँ बिल्कुल। अच्छा, किताब में कई ऐसी पंक्तियां हैं जो दिमाग में अटक जाती हैं। शिरेश का एक मुख्य विचार है, अगर मैं सरल शब्दों में कहूं तो, सबसे अच्छे सिफारिश इंजन सिर्फ ये नहीं बताते कि मुझे क्या लेना चाहिए, वे ये जानने में मदद करते हैं कि मुझे कौन बनना चाहिए।
वाओ, ये लेन देन से पहचान बदलने वाली भूमिका की तरफ इशारा करता है।
हाँ, और एक और दमदार विचार, हर सिफारिश आपके बारे में एक परिकल्पना है, आपका हर चुनाव उस परिकल्पना की पुष्टि या खंडन करने वाला डेटा है।
ये हमारे और सिस्टम के बीच के उस लगातार चलने वाले संवाद को दिखाता है जिससे हमारी डिजिटल पहचान बन रही है, एक्टिव फीडबैक लूप पे है।
भविष्य के बारे में उनका कहना है, हम सिफारिश के युग से सलाह के युग की ओर बढ़ रहे हैं। असली भविष्य अगली फिल्म सुझाने में नहीं, बल्कि बेहतर करियर पथ या स्वस्थ जीवन शैली पर सलाह देने में है।
ये दिखाता है कि तकनीक अब जीवन के ज्यादा गंभीर फैसलों में भी दखल देगी।
और ये शायद सबसे बुनियादी और चौंकाने वाली बात है, सिफारिश इंजन सिर्फ ये अनुमान नहीं लगाते कि हम क्या चाहते हैं, वे यह बनाने में भाग लेते हैं कि हम क्या चाहते हैं।
क्या बात है, वो सिर्फ दर्शक नहीं है, वो हमारी इच्छाओं को गढ़ने वाले कलाकार भी हैं। ये हमें अपनी पसंद नापसंद पर ज्यादा गहराई से सोचने को मजबूर करता है। क्या ये वाकई मेरी पसंद है या एल्गोरिथम की देन है? सोचने वाली बात है।
तो इस सब का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? हम आप सब लोग इन ताकतवर सिस्टम्स के साथ कैसे जी सकते हैं? एक यूजर के तौर पर पहली चीज है जागरूकता, है ना?
हाँ बिल्कुल, जब कोई सुझाव दिखे तो एक पल रुक कर सोचें, ये मुझे क्यों दिखाया जा रहा है? क्या ये वाकई मेरे लिए है या किसी और एजेंडा का हिस्सा है?
हाँ, और शायद कभी कभी जानबूझकर लीक से हटकर चलें?
हाँ, उसे आप सेरेंडिपिटी इंजीनियरिंग कह सकते हैं, यानी जानबूझकर कुछ नया, कुछ अप्रत्याशित आजमाना।
अच्छा नाम है।
हाँ, अगर आपका म्यूजिक ऐप हमेशा आपको बॉलीवुड गाने सुझाता है तो एक दिन जैज या क्लासिकल सुनकर देखिए। अपने फिल्टर बबल को फोड़ने की कोशिश करें, सुझावों को बस एक शुरुआती बिंदु समझें, मंजिल नहीं।
बिजनेस और क्रिएटर्स के लिए भी यहाँ सबक है, सिर्फ क्लिक्स या बिक्री से आगे सोचें। क्या आप ग्राहक का भरोसा जीत रहे हैं? क्या आप उन्हें सिर्फ वही दिखा रहे हैं जो वो देखना चाहते हैं, या उन्हें कुछ नया खोजने में भी मदद कर रहे हैं?
हाँ, और रचनाकारों के लिए लॉन्ग टेल की ताकत को समझें और अपनी रचनाओं को सही मेटाडेटा देकर खोजने लायक बनाएं।
और हाँ, शिक्षकों और नीति निर्माताओं को भी इस पर ध्यान देना होगा। व्यक्तिगत शिक्षा या स्वास्थ्य सलाह में इसकी संभावनाएं अधूत हैं, लेकिन नैतिक जिम्मेदारियों के साथ।
पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही बहुत जरूरी है, खासकर जब ये तकनीक जीवन के अहम फैसलों को प्रभावित करे, ये बहुत जरूरी है।
मेरे लिए इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ा सबक ये है कि हमें इन एल्गोरिथम्स को सिर्फ डिजिटल सेल्समैन की तरह देखना बंद करना होगा। ये अनजाने में हमारी पहचान को गढ़ने वाले साथी बन गए, और सबसे चौंकाने वाला विचार शायद वही भविष्य के स्ववाला, ये सोचना कि मेरा हर ऑनलाइन क्लिक मेरे आने वाले कल के मैं से एक बातचीत है, ये नजरिया ही बदल देता है।
मैं सहमत हूँ। मेरे लिए सबसे खास बात यह है कि इस एल्गोरिथम वाले दुनिया में भी हमारे पास अभी भी एजेंसी है, हमारे चुनाव मायने रखते हैं, हम सिर्फ बहते पत्ते नहीं हैं, हम इन सिस्टम्स को प्रभावित कर सकते हैं। और दूसरी बात, इन इंजनों की विशाल क्षमता, मनोरंजन से आगे बढ़कर शिक्षा, स्वास्थ्य और शायद मानव क्षमता को बढ़ाने में इनका जो रोल हो सकता है वो सचमुच रोमांचक है। ये हमें इस सवाल पर छोड़ देता है, क्या हम अपने डिजिटल नियति को होशपूर्वक आकार दे रहे हैं या बस एल्गोरिथम के इशारों पर चल रहे हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसी नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।